अब हम चीन और जापान के बीच 1937 ईस्वी में हुए युद्ध पर चर्चा करेंगे और चीन पर उसके प्रभावों को भी देखेंगे। 1931 ईस्वी में मंचूरिया कांड ने जिस घटनाक्रम को जन्म दिया वह 1937 ईस्वी में द्वितीय चीन जापान युद्ध के रूप में चरम शिखर पर पहुंच गया। इसकी पृष्ठभूमि में जापान की विशिष्ट परिस्थितियां तथा प्रवृत्तियों को चीनी राष्ट्रवाद एवं विश्व राजनीति की घटनाओं का भी हाथ रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान में अति राष्ट्रवादी संस्थाओं का उदय हुआ था। वे जातीय एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता तथा अग्रगामी साम्राज्यवाद का पक्षधर थी एवं उदारवाद, लोकतंत्र, पूंजीवाद और व्यक्तिवाद जैसे पाश्चात्य विचारों का विरोधी थी। 1934-35 ईस्वी में के आसपास जापान ने के राष्ट्रीय जीवन के कुछ विशिष्ट पक्षों पर विशेष जोर दिया गया। निकटवर्ती द्वीप पर साम्राज्यवादी अभियान, पश्चिमी देशों के प्रभाव को ग्रहण करने की अनिच्छा, पश्चिमी देशों में समग्रवाद का उदय, पश्चिमी देशों द्वारा जापान एवं जापानियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार के फलस्वरूप उत्पन्न उत्तेजना, चीन में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना और जापान विरोधी आंदोलन आदि के फलस्वरूप जापान के उदार विचारों में कमी आ गई। फिर से ध्यान दीजिएगा, सशस्त्र सेनाओं में अतिवादी तत्वों का उदय हुआ। अपनी अग्रगामी नीति के कारण 1936 ईस्वी तक जापान चीन के साथ ही अन्य प्रशांत सागरीय क्षेत्रों के लिए संकट बन गया था। जापान के शासन और राजनीति में सैन्यवादियों का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे सेना ने अर्थव्यवस्था, समाज, शिक्षा और विचार पर अपना प्रबल नियंत्रण स्थापित कर लिया। द्वितीय चीन जापान युद्ध के छिड़ने में इन परिस्थितियों तथा प्रवृत्ति का बड़ा योगदान था। 1936-37 ईस्वी का वर्ष जापान के अत्यंत अनुकूल था। अमेरिका और यूरोपीय देश अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे। वे सुदूर पूर्व की ओर ध्यान देने की स्थिति में नहीं थे। इस कारण जापान को खुलकर खेलने का अवसर मिल गया था। जापान की सुदृढ़ भौगोलिक, आर्थिक तथा सैनिक स्थिति ने भी उसे इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह अपनी साम्राज्यवादी नीति को जारी रख सके। 1936 ईस्वी में उसने वाशिंगटन की संधियों को भंग कर सैनिक तैयारियां शुरू कर दी। चीन के निर्बल तथा असंगठित होने के कारण जापान को बड़ी प्रेरणा मिली। जापान चीन को संगठित होने से पहले ही उस पर आक्रमण कर अपना अधिकार करना चाहता था। इसके साथ ही मंचूरिया में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए जापान का संपूर्ण ध्यान चीन पर आधिपत्य जमाने और अपने प्रभावशाली सरकार को स्थापित करने की तरफ था। चियांग काईशेक तथा उसके सहायकों का दमन कर जापान मांचुकुओं के समान ही आज्ञानुवर्ती शासन की स्थापना करने के लिए कटिबद्ध था। वह उत्तरी चीन में अपने प्रभाव को बढ़ाना, रूस की संभावित कार्रवाइयों को रोकना तथा सेंसी में साम्यवादियों को नियंत्रित करना चाहता था। उसने इस आशय की मांग चियांग काईशेक के समक्ष रखी। 1936-37 ईस्वी के निर्वाचन में पराजित होने के बाद सैन्यवादियों ने अनुभव किया कि अब सैनिक अधिनायकवाद की स्थापना के लिए विदेशी संघर्ष आवश्यक है। जापान ने जर्मनी तथा इटली के साथ साम्यवादी विरोधी करार पर हस्ताक्षर कर फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के विरुद्ध यूरोप के सर्वाधिक आक्रामक एवं शक्तिशाली राष्ट्रों को अपना मित्र बना लिया। साथ ही उसे सुदूर पूर्व में अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में उक्त राष्ट्रों का सहयोग भी प्राप्त हो गया। अब वह दक्षिण पूर्व एशिया तथा हिंदेशिया की ओर भी गिद्ध की दृष्टि से देखने लगा। सर्वप्रथम जापान चीन की ओर उन्मुख हुआ, जिसके साथ रूस की संधि की चर्चा से वह चिंतित था। बॉक्सर समझौता के अंतर्गत अन्य विदेशी शक्तियों के साथ ही जापान को भी चीन में अपने दूतावास की रक्षा के लिए रक्षात्मक सेना रखने का अधिकार मिला था। जापान की सैन्य संख्या संधि की शर्तों की सीमा को पार कर रही थी। 7 जुलाई 1937 ईस्वी को चीनी सेनाओं पर आक्रमण का आरोप लगाकर जापानियों ने गोलाबारी आरंभ कर दी। इसे मार्को पोलो पुल की घटना कहते हैं। पेकिंग के बाहरी क्षेत्रों में चीनी और जापानी सेनाओं में मुठभेड़ हुई। इसे स्थानीय घटना मानने से इनकार कर जापान ने पूरी शक्ति के साथ चीन पर आक्रमण कर दिया। जापान की स्थिति इस समय सुविधाजनक थी। समुद्री यातायात, परिवहन पर आबाद नियंत्रण, वायुसेना की श्रेष्ठता, गोला बारूद तथा अन्य शस्त्रों की दृष्टि से वह श्रेष्ठ स्थिति में था। औद्योगिक संस्थान तथा सैन्यत और सेनाधिकारियों की सुप्रशिक्षित समूह से उसकी स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। जापानी सेना संपूर्ण पेचिंग तिंतिशिन क्षेत्र को जीतने तथा अगस्त के अंत तक सुई युआन प्रांत पर, फिर से ध्यान दीजिएगा, सुई युआन प्रांत पर आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से अग्रसर हुई। अगस्त 1937 ईस्वी में जापान ने एक अन्य घटना की आड़ लेकर शंघाई पर आक्रमण कर दिया। बिना युद्ध की घोषणा किए ही एक जापानी बेरे ने नगर पर बमबारी की और वृहद संख्या में जापानी सैनिक उतार दिए गए। नवंबर में शंघाई के पतन के बाद जापानी सेनाएं नानकिंग की ओर बढ़ी। दिसंबर में नानकिंग पर भी अधिकार हो गया। कैंटन का भी पतन हो चुका था। 1938 ईस्वी के अंत तक जापान दक्षिण मध्य तथा उत्तर से चीन के आंतरिक प्रदेश में प्रविष्ट होने में सफल हो गया। अधिकांश महत्वपूर्ण बंदरगाहों, नगरों तथा औद्योगिक केंद्रों पर उसका अधिकार था। अधिकांश महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर भी जापान का नियंत्रण हो गया। 1938 ईस्वी के बाद जापानियों ने कतिपय विजय हासिल की। 1939 ईस्वी में नान द्वीप का पतन हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, 1939 ईस्वी में हनान द्वीप का पतन हो गया। फिर भी उत्तरी चीन को छोड़ जापानियों को संपूर्ण चीनी समुद्र तट पर कभी भी अधिकार नहीं हुआ। और अथक प्रयासों के बावजूद कैंथन, हैंकाऊ या हैंकाऊ पेकिंग रेलमार्गों पर उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली। नवंबर 1939 ईस्वी में चीनियों की विजय ने जापानियों को चांगसा में अवरुद्ध कर दिया। वे यांगत्सी क्षेत्र से भी निकाले गए। हैंकाऊ के बाद विजित क्षेत्र पर जापानियों के अधिकार की असुविधाजनक स्थिति के लिए चीनियों ने छापामार युद्ध का सहारा लिया। इस युद्ध प्रणाली का नेतृत्व साम्यवादियों ने ग्रहण किया। जापान ने चीन में वांग चिंग वी के नेतृत्व में जापान समर्थक सरकार की स्थापना की। जापान ने नानकिंग की कठपुतली सरकार के अधीनस्थ चीन के भागों के स्रोत साधनों के विकास का प्रयास किया। चीन जापान के संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनियों के माध्यम से जहाजरानी, रेलमार्गों और कारखानों और अन्य आर्थिक उद्यमों पर जापान ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। विद्यालयों का पुनर्संगठन किया गया और विद्यालयों का पुनर्संगठन इस प्रकार किया गया कि जापानी भाषा की शिक्षा दी जा सके तथा पाठ्य पुस्तकों के द्वारा जापान के प्रति मैत्री भावना की वृद्धि हो सके। जापानियों ने अधिकांश बंदरगाहों पर अधिकार स्थापित कर लिया। 1938 ईस्वी में चीनी आर्थिक साधनों के एकाधिकार के लिए टोक्यो में चीन संबंधी निगम ने उत्तरी चीन विकास संस्थान की स्थापना की। यांगसी घाटी में केंद्रीय चीन विकास संस्थान ने आर्थिक केंद्रों पर अधिकार कर लिया। दक्षिणी प्रदेशों के लिए भी एक ऐसा ही संस्थान खोला गया था। इन संस्थानों के माध्यम से समस्त चीनी उद्योग, यातायात, संचार, परिवहन, जहाजरानी निगम, बैंक आदि पर जापान का अधिकार हो गया। जापान सरकार ने चीन के टटकर शुल्क में अपने अनुकूल परिवर्तन किए, जिससे चीन में जापानी वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई। चीन ने राष्ट्रसंघ से अपील की, लेकिन इस समय तक राष्ट्रसंघ कमजोर हो चुका था। असेंबली ने प्रस्ताव पास करके जापान की कार्रवाइयों की निंदा की, लेकिन प्रस्ताव पास करने से चीन को कोई लाभ नहीं होने वाला था। जापान ने चीन के विरुद्ध युद्ध जारी रखा और उसके भूभागों पर अपना अधिकार बढ़ाता रहा। उसकी सेना निरंतर आगे बढ़ती रही। चीनियों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति द्वारा युद्ध जारी रखा। 1939 ईस्वी में चीन जापान संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध का भाग बन गया। चीन और जापान के बीच युद्ध की स्थिति 1945 ईस्वी तक बनी रही। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पराजित हुआ और इसके बाद ही चीन को अपने भूभागों पर पुनः अधिकार करने का मौका मिला। हम कह सकते हैं कि चीन अपने राज्यों पर अपनी स्वायत्तता स्थापित करने में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हारने के बाद ही सफल हो पाया।